जी वहां पे जो गाजा के अंदर जीनोसाइड चल रहा है और यूरोपियन एथनो नेशनल सेटलिस्ट कॉलोनियल जो ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं पैलेस्टाइन के खिलाफ, तो मेरा कॉन्शियस मुझे ये इजाजत नहीं देता है कि मैं इस अपने ओहदे के ऊपर कायम रहूं। ये इसराइल इस वक्त टेक्स्ट बुक जीनोसाइड जो है वो गाजा के अंदर कर रहा है और यूएस, यूके और मोस्ट ऑफ यूरोप जो है वो इसके अंदर शामिल है और ये वॉर क्राइम्स के अंदर आता है। उनका एक इंटरनेशनल जो जिनीवा कन्वेंशंस हैं उनके अंडर इन सब कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन किया हुआ है जिसमें कि जहां पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में होंगी उनको रोकने का इनका काम है, जो कि ये नहीं रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो कुछ भी इस वक्त इसराइल के अंदर हुआ, जिसका इन्होंने बड़ा रिएक्शन जो किया, ये डेकेड्स ऑफ इजरायली जो इंप्यूनिटी दी गई है यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से, उसकी वजह से ये इतना शेयर हुआ हुआ इजराइल और ये सारा कुछ कर रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये इन्होंने डेकेड से डीह्यूमनाइज किया है पैलेस्टीनियंस को और इसके अंदर इनका मीडिया भी शामिल है। तो मैं इस सूरत में ह्यूमन राइट्स का डिफेंडर बनके, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनके नहीं रह सकता है। बोलिविया ने भी आज जो है वो अनाउंसमेंट किया कि हम अपने तमाम के तमाम जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इसराइल के साथ तोड़ रहे हैं। इसके ऊपर जो है इसराइल ने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया। इसराइल के प्रेसिडेंट ने यह अनाउंसमेंट की थी। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं लियोर हेयट, उन्होंने कहा जी कि यह डिसीजन यह शो करता है कि आप टेररिज्म के सामने सरेंडर कर रहे हैं और आयतुल्ला की जो ईरान के अंदर रजीम है उसके आगे आप घुटने टेक रहे हैं। बोलिविया ने कहा कि हम अपने इसलिए रिलेशनशिप्स इसराइल के साथ खत्म कर रहे हैं क्योंकि एक डिसअप्रोप्रिएट इसराइली मिलिट्री ऑफेंसिव गाजा के अंदर चल रहा है जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है। ईयू के कमिश्नर फॉर फॉरेन अफेयर्स जोसेफ बोरेल ने भी अपने एक्स के ऊपर लिखा कि मैं आई एम अपॉल्ड टू सी द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज after Israel's bombing of Jabalia रेफ्यूजी कैंप, जिसकी कि हमने कल आपको सारी स्टोरी बताई थी कि जबलिया रेफ्यूजी कैंप के ऊपर जो इन्होंने अटैक्स किए उसमें क्या हुआ। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि इंतहाई इनह्यूमन ये टारगेटिंग जो है इसराइल ने की है जबलिया के लिए। इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी इसी तरह की सिमिलर बातें की। यमन ने कहा कि फौरन यहां पर सीज फायर किया जाए और ये वॉर क्राइम्स को रोका जाए। पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने भी कहा है कि ये जो इधर किया गया है जबलिया के कैंप में, जिसमें कि सैकड़ों ही बच्चे औरतें जो हैं जिनकी के डेथ्स हुई हैं, ये वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं और हम दुनिया इसको इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जो इस जुर्म के अंदर शामिल हैं। दिस इज अ टोटल कार्नेज विच शुड एंड। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाए ने भी मुस्लिम स्टेट्स को कहा है कि आप ऑयल और फूड फौरन बंद कर दें टू इसराइल। कतर ने कहा है कि अगर आप ये इस तरह की चलाते रहेंगे एयर स्ट्राइक्स गाजा के ऊपर, तो हम जो मीडिएट कर रहे हैं 200 कैप्टिव्स को निकालने के लिए हमास से गाजा में, वो हम नहीं कर सकेंगे। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि इसराइल के जो अटैक्स हैं गाजा के अंदर सिविलियंस के ऊपर जैसे कि, और उनके जो सिविलियन ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स और पॉपुलेशन सेंटर, ये वॉर को बेताशा बढ़ा रहे हैं। यूएई ने कहा कि इमीडिएटली सीज फायर किया जाए। इसके अलावा कतर ने कहा कि आप जो है हम अग्रीमेंट जो अब मीडिएट कर रहे हैं इजिप्ट और हमास और इसराइल के बीच में रफा को जो उन्होंने खोला है, तो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे आज की हम न्यूज बता दें कि रफा क्रॉसिंग जो है उसको खोल दिया गया है आफ्टर कतर मीडिएटेड और इसके अंदर जो है 320 फॉरन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो अब वहां से निकल के आगे हैं और भी कुछ लोग हैं, 500 के करीब थे तो फर्स्ट बैच जो है वहां से आया है। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है जी, और रॉयटर्स की ये रिपोर्ट मैंने इसलिए ली है और किसी अनवेरीफाइड सोर्स से नहीं ली क्योंकि आपको शायद ये खबर सुनकर हैरत हो सकती थी। सो आई फाउंड अ सोर्स इन रॉयटर्स। रॉयटर्स ने आज ये खबर किया है कि बेल्जियम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उन्होंने एब्सोल्यूटली जो इसराइल को बेल्जियम असला भेज रहा है, एसीवी पोल्स बीटीबी बीबीटी के एसीवी ट्रांसकॉम ये तमाम जो यूनियंस हैं इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल एयरपोर्ट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि बेल्जियम की गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट इसराइल को भेज रही है और हम जब इसको अपलोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं तो हम भी इस क्राइम में शामिल हैं जो इसराइल पैलेस्टाइन के खिलाफ कर रहा है। उन्होंने बेल्जियन गवर्नमेंट को कहा है यूनियंस ने कि हम बाकी तमाम सामान जो है हर जगह पे हर तरह का भेजेंगे, सिर्फ जो आप इसराइल को सामान भेज रहे हैं उसको हम बिल्कुल लोड नहीं करेंगे एरोप्लेन्स के ऊपर। और उन्होंने फौरन बेल्जियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप सीज फायर की तरफ जाएं, और हमारी जो शुरू दिन से हमारी जो प्रायोरिटीज थी वो बिल्कुल क्लियर थी। जिस वक्त रशिया और यूक्रेन का भी जब झड़पें शुरू हुई थी और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस वक्त भी हमने कहा था कि बेल्जियन की गवर्नमेंट किसी को आर्म्स नहीं भेजेगी। तो इस वक्त बेल्जियम की गवर्नमेंट जो है वो क्यों आर्म्स भेज रही है इसराइल को? बहरहाल बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। अल जजीरा की यह खबर है और यह बहुत ही दिल दुखाने वाली खबर है, और आज मैंने बल्कि अपना ट्वीट भी किया, अगर आप देख सकते हैं एक्स के ऊपर, के ये जो सारी मी टू के अंदर जो हमारी आंटियां बड़ी निकली हुई थी बाहर कि ओ हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, तो आज वो आंटियां जो हैं वो किधर हैं? अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक औरतें जो हैं पैलेस्टाइन के अंदर वो ये पिल्स ले रही हैं, नॉर्थेस्टेरॉन टेबलेट्स, ताकि उनको पीरियड्स ना आए, क्योंकि वो कह रही है जी कि यहां पे ना तो सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं ना टेम्पॉन्स मिल रहे हैं, और यहां पे शावर आप एक दफा ले सकते हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि शावर की राशनिंग हो रही है, बाथरूम्स में नहीं जा सकते, बाथरूम्स की राशनिंग हो रही है, और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, जिसकी के वजह से हम पीरियड्स जो है होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको पता हो कि ये दवाई उनको दी जाती है सिर्फ जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या जिनको बड़ा डिसकंफर्ट या पेन होता है, और इसके बड़े सख्त साइड इफेक्ट्स हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में भी डॉक्टर्स नहीं देती हैं, क्योंकि इनसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खराब होता है, डिजीनेस होती है, नौजिया होता है, इररेगुलर ब्लीडिंग होती है। लेकिन गाजा में औरतें कह रही हैं हमारे पास और कोई वे नहीं है टू यू नो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स जो है इतनी ज्यादा यहां पे बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो शेल पाकिस्तान है और उसकी जो पेरेंट कंपनी है शेल पेट्रोलियम को, उन्होंने जनाब एक डील साइन की है सऊदी वाफी एनर्जी एलएलसी के साथ, 77.42% अपने शेयर्स जो हैं वो उनको सेल कर रहे हैं, और ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था ऑन कैपिटल मार्केट्स डे इन जून 2023 का वो ये ऐसा करेंगे। लेकिन शेल ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो हैं सारे जो हैं जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये कहा है कि सऊदी जो गवर्नमेंट है वो इसको जो है यानी ये जो कंपनी है वो इसको लेगी। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट, ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट हलाल जो है वो बफे है पाकिस्तानी, अगर आप उधर खाना खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। राजा बादशाह जी आपको पता ही है, वो आपको कहते हैं कि आपको बहुत अच्छी डील देंगे, एजेक्स एजेंसी ऑल स्टेट की जो है उसके साथ हैं एसोसिएटेड हैं, और नानन कबोब नई उनकी लोकेशन आ गई है, अगर आप उनके साथ हेल्दी खाना लेना चाहते हैं तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ऑल्सो नेक्स्ट टू वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेलफोन्स लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स इनके पास अब अर्जेंट फोन रिपेयर है, लैपटॉप एंड जीपीएस डैश कैम एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेक्स्ट टू वायरलेस 7171 गोरवे ड्राइव यूनिट नंबर 2 मिसेस सागा में, फोन नंबर नोट कर लें 6472720020। ग्रिल एंड चिक की बात कर चलो, इनका कहना है कि बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन 3525 प्लैटिनम ड्राइव इन मिसेस सागा, एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। www.grillandchick.com पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। 9054560500 इनका फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट चांदनी विक्टोरिया .ca पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लें। 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में लोकेटेड है, 1200 से 1400 लोगों की यहाँ बैठने की जगह है। ग्रेट एंड ब्यूटिफुल ये बैंक्वेट हॉल। 6479653823 इनका फोन नंबर है
जी। पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा है कि क्या आप सिंसियर भी हैं इस मुल्क के साथ के नहीं है। वो आज पटिशन सुन रहे थे, हियरिंग्स कर रहे थे उस पटिशन की जो डाली गई थी ऑन February 6, 2019, जिसमें कि जजमेंट दी गई थी कि 20 डे फैजाबाद धरना जो हुआ था उसने जो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर तमाम जो है वो सिस्टम ऑफ लाइफ जो है धर्म भरम कर दिया था और बहुत सारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो गए थे के ऊपर ये सुन रहे थे। इससे पहले एक 3-member बेंच जो है उसने कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिसेस अमीनुद्दीन खान एंड अकबर मिनल्ला, उन्होंने ये जो थी चैलेंजेस जो थी उनके ऊपर रूलिंग्स दी थी। तो जस्टिस ईसा जो थे उन्होंने इस सारी चीज को ऑथर किया था उस वक्त, तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था डिफेंस मिनिस्ट्री को और जितने भी तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं कि वो तमाम लोग उनको पिनलाइज किया जाए अंडर देयर कमांड, जिनको के जिनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने अपने ओथ को वायलेट किया है, और उन्होंने जो बहुत सारी जो फेडरल मिनिस्ट्रीज थी उसमें भी ऑफिशियल्स को कहा था कि आप मॉनिटर करें कि कौन हेट स्पीच कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को हवा दे रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो उन्होंने उस वक्त जिस वक्त ये दिया था तो इसको चैलेंज किया गया था, तो आज वो उसके ऊपर जो है बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस तरह के धरने जो है वो किसके हक में है और ये इसके जो ऑर्डर्स हैं ये कौन देता है। आईएसपीआर की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक 6 टेररिस्टों को मार गिराया गया है संबाजा के एरिया में, बलूचिस्तान का जो जोब डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था दोनों के बीच में उसके अंदर ये जो है डेथ्स हुई थी। इसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारा आर्म्स एमिनेशन और एक्सप्लोजिव उनके कब्जे से लिया था। ये सारे टेररिस्ट जिनको मार गिराया गया है ये बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के अगेंस्ट करते थे और जो इनोसेंट सिविलियंस हैं पाकिस्तान के उनके खिलाफ ये करते थे। इसके बाद जो है 9 लोगों की डेथ हुई और 14 इंजर्ड हुए, जो क्लैशेस हो रहे हैं कोरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसमें के 2 जो हैं बच्चे भी शामिल हैं जिनकी के डेथ हुई है और एक औरत भी है, और बहुत दिनों से यहां पे क्लैशेस चल रहे हैं। डीपीओ मोहम्मद इमरान जो हैं उन्होंने कहा कि अब वैसे सीज फायर यहां पे हो गया है और फोर्सेज जो उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया है, लेकिन फिर भी जो फायरिंग है वो कॉन्स्टेंटली यहां पे आज भी सुनी जा रही है। इंडिया के अंदर काफी हैवी फायरिंग देखी गई क्योंकि 3,000 आर्म्ड मिटाई मॉप जो है जिसके बारे में कहा गया है जिन्होंने के बहुत सारे जो है जाके लड़ाई शुरू की मणिपुर राइफल्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुकी जो यहां पे हैं जिनसे के बहुत सारा सामान पहले जो इन्होंने चुराया था यानी कि जो असला चुराया था जो रिकवर किया था उसके खिलाफ ये मोर्चे निकाल रहे थे और कह रहे थे कि ये कॉन्स्टेंटली मिठाई जो है उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे जो थे। लेकिन देखा गया था आज जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मिठाई राइट विंग ग्रुप अरम बाय तंगोल जो हैं वो यहां पे जमा हो गए थे और फिर चले गए थे पैलेस कंपाउंड में लशिम्बा सना जोबा के जो कि बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और फिर मेंबर ऑफ मणिपुर की रॉयल फैमिली से भी हैं। यहां पे जब लड़ाइयां झगड़े हुए तो वहां पे काफी सारी जो है लोग इंजर हुए। इससे पहले भी मणिपुर के 2 पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो जख्मी हुए थे इन सेपरेट अटैक्स के अंदर जिसके बारे में कहा गया था कि ये कुकी मिलिटेंट्स ने किया है। एसडीपीओ जो है उसके अंदर उसकी भी एक डेथ हुई थी और यहां पे जो वायलेंस चल रही है मणिपुर के अंदर कॉन्स्टेंटली उसके अंदर मिताई जो है वो कह रहे हैं कि कुकी जो है हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं जबकि कुकी कह रहे हैं कि मिठाई जो है वो कॉन्स्टेंटली हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। द वायर की ये स्टोरी है जी और इसके मुताबिक जो है आज 39th एनिवर्सरी थी 1984 एंटी सिख प्रोग्राम की जिसके के अंदर जो है दिल्ली के अंदर काफी लोगों को सिखों को मारा गया था। इसके अलावा और भी जो हिंदुस्तान के दूसरे इलाके थे उधर भी जैसे कि कानपुर और बोकारो और भी बहुत इलाकों में बहुत बड़े बड़े ये जो है इनके खिलाफ मोर्चे निकाले गए थे। इसमें आज जो वायर की स्टोरी है वो कहती है ये जो कुछ भी हुआ कांग्रेस के रूल में हुआ तो कांग्रेस के जो रूल में इनको अब जो कुछ हुआ उसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। वो कहते हैं हालांकि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं बड़े बड़े कमलनाथ और जगदीश टाइटलर उन्होंने अभी तक कोई ना तो अपॉलोजी दी है और ना तो उन्होंने कुछ सिखों के साथ कोई अच्छी बात करने की कोशिश की है। हालांकि जितने भी आई विटनेसेस थे जो कि कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने इनकी तरफ इशारा भी किया था। यहां पे बहुत जो मैस किलिंग्स हुई थी दवायर की ये स्टोरी कहती है कि अभी तक उससे सिख जो कौम है उसके ऊपर उसके जो जख्म है उसकी रूह के ऊपर वो नहीं गए हैं। तो वैसे तो राहुल गांधी जी बहुत प्यार की बातें करते हैं तो अब वक्त आ गया है कि वो प्यार की बात करें और सिखों से माफी मांग लें कांग्रेस के बिहाफ पे, क्योंकि नानावती कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी 1984 में उसमें उन्होंने लिखा था कि सिखों का उस जमाने में मैसेकर किया गया था और जो है कांग्रेस लीडर्स जो हैं उसके अंदर बहुत सारे अलेजली शामिल थे। राहुल गांधी ने भी अभी रिसेंटली जो एक टीवी का इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ लीडर जो थे वो इस ट्रेजिक इवेंट्स के अंदर शामिल थे और इसीलिए आज लोगों ने कहा कि राहुल गांधी फिर माफी क्यों नहीं ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन सोसाइटी जो है उसने आज तक कभी सिख कम्युनिटी को एज विक्टिम तस्लीम नहीं किया है और जब तक वो नहीं करेंगे तो वो इस सिलसिले में माफी भी नहीं मांगेंगे, लेकिन कांग्रेस अगर सिंसियरली इनसे माफी मांगे इस अनरेस्ट के लिए क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर वो अलेजली इन्वॉल्व पाई गई थी तो सिखों के जख्म जो हैं वो काफी कम हो सकते हैं। आज जनाब लोगों को बताया गया है कि शाहरुख खान की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है जिसको के राजू हीरा जिसको के बना रहे हैं राजकुमार हिरानी दुनकी, वो अब कल उसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हो सकता है क्योंकि कल शाहरुख खान की 58th बर्थडे है। तो उनकी बर्थडे के मौके पे ये फिल्म का ट्रेलर आएगा। ये फिल्म वैसे लगाई जाएगी सिनेमाज के अंदर December 22nd को ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, और इसका टीजर जो है वो शो करेगा कि शाहरुख खान की क्या लुक रहेगी और स्टोरी क्या रहेगी और इनके साथ जो लीडिंग लेडी हैं तापसी पन्नू वो कैसी रहेंगी। इसके अलावा शायद राजकुमार हिरानी के जो रेगुलर्स हैं जिनके साथ उनको बड़ा प्यार है, जिन स्टार्स का दिया मिर्जा, प्रकृषित सानी, बोमन ईरानी, धर्मेंद्रा, सतीश शाह, ये भी शायद इसमें नजर आ सकते हैं, और कैमियोज में कजोल और विकी कौशल भी नजर आ सकते हैं। आज ऐश्वर्या रॉय बच्चन ने अपनी 50th बर्थडे मनाई और इसके ऊपर जो है उनके डिफरेंट जो रोल्स उन्होंने ओवर द ईयर्स किए हैं उसको याद किया गया। इंडस्ट्री कॉलीग्स ने उनको बहुत सारी विशेज दी और बहुत सारी अपनी थ्रो बैक जो पिक्चर्स थी ऐश्वर्या रॉय के साथ वो अपनी इंस्टा स्टोरीज के ऊपर शेयर की। सलमान खान और कैटरीना कैफ की जो फिल्म टाइगर 3 आने वाली है उसका लोगों को बहुत जोर से इंतजार है इस वास्ते के जो सलमान खान है 6 साल से बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आए हैं अपनी किसी मेजर फिल्म में। हाँ छोटी छोटी अपीयरेंसेज में शाहरुख खान की फिल्म और इधर उधर नजर आते रहे हैं लेकिन इसके अलावा नजर नहीं आए। इसकी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि अब जो मेकर्स हैं फिल्म के उन्होंने अब सिनेमा हॉल्स के साथ बात की है कि सुबह 7 बजे से ही November 12th को जब ये फिल्म सिनेमाज में आएगी तो सुबह 7 बजे से ही इसके शो शुरू हो जाएंगे। टाइगर 3 में सलमान के साथ कैटरीना और इमरान हाशमी भी नजर आएंगे और इसकी एडवांस बुकिंग जो है टिकट्स की वो November 5 से शुरू होएगी। वर्ल्ड कप के मैच में आज जनाब साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया। क्विंटन डीकॉक ने 114, रॉसी डसन ने 113 रन की मदद से 357 फॉर 4 पोस्ट किया जो कि चेज करना था न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पहले जो है इनको टॉस जीत के कहा था कि आप बैटिंग करेंगे और केशव महाराज जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका के उन्होंने 4 विकेट्स ली, मार्को जेंसन ने 3, जेरल्ड कॉट्सी ने 2 और साउथ अफ्रीका अब जो है इसकी ये 6th विन है वर्ल्ड कप में और अब ये पॉइंट्स टेबल पे इंडिया से भी ऊपर चला गया है। शाहिद अफरीदी ने आज बहुत ज्यादा एतराज किया जो जका अशरफ जावे पीसीबी के चेयरमैन उनके ऊपर क्योंकि एक जो है रिसेंटली इनके बारे में खबर आई थी कि मीडिया हाउसेस के जो ओनर्स हैं उनको इन्होंने बुलाया था और बहुत ज्यादा उनको हिट किया था कि क्यों लोग जो हैं आपके चैनल्स पे आके मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि फॉर गॉड सेक आप चेयरमैन पीसीबी हैं, आप क्यों ये छोटी छोटी बातों के अंदर फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि लोग आपको क्या इससे लगे कि लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, यू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ और आप कॉन्स्टेंटली अननेसेसरी स्टेटमेंट्स जो हैं बाबर के बारे में भी देते हैं जबकि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया है। यू शुड नॉट पे एनी हीड टू दीज कॉमेंट्स और एनीबडी एल्स स्पीकिंग अगेंस्ट यू और आप जो हैं आपको ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है यू नीड टू स्टिक टू योर बिजनेस। तो बहुत ही सख्त बातें आज शाहिद अफरीदी ने की। जहीर अब्बास साहब ने भी आज पीसीबी को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जो पाकिस्तान की बहुत ही लैक लस्टर किस्म की जो परफॉर्मेंस चल रही है वर्ल्ड कप के अंदर। एक टीवी शो के अंदर उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो जब आप गेम के हेड्स जो हैं उनको अपने फेवरेट्स बना देते हैं तो उस वक्त फिर जो क्रिकेट की गेम है वो सफर करती है। ये पूरी कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर क्रिकेट को डिस्ट्रॉय किया जाए और उन्होंने भी कहा फॉर गॉड सेक इस स्पोर्ट्स को बचाने की जरूरत है और पीसीबी का हेड किसी स्पोर्ट्समैन को लगाएं जिनको कि गेम के बारे में पता है, जिनको कुछ पता ही नहीं है उनको जब आप हेड्स लगाएंगे तो इसी तरह की डिसअपॉइंटेड जो है परफॉर्मेंसेज आएंगी। इसके अलावा उन्होंने इंजमामुल हक के ऊपर भी बहुत ज्यादा हिट किया और उन्होंने कहा जी कि राइट इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड कप दुनिया कहां ऐसे होता है कि कोई सिलेक्टर्स जो होते हैं वो एकदम से रिजाइन कर देते हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो रीसेंट डिक्लाइन देखा गया है गेम के अंदर वो आफ्टर लॉस टू इंडिया है जिसमें कि टीम ने अपना मोरल जो है वो खो दिया था। इंडियन पुलिस जो है जी कल जब मैच हो रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में तो उसके बीच में कुछ लोग पैलेस्टीनियन फ्लैग्स लेकर आए हुए थे, इंडियन पुलिस के लोगों ने उनको पकड़ा और उनको डिटेन किया लेकिन मैच के बाद उनको छोड़ दिया और उनको कहा गया कि भाई आप ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें और यहां पे पॉलिटिकल ना बनाए और पैलेस्टाइन के झंडे ना लहराएं। इससे पहले भी एक जो लॉयर हैं इंडियन विनीत जिंदल, उन्होंने मोहम्मद रिजवान जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच पाकिस्तान जीता था तो उन्होंने कहा था ये मैं अपनी जीत पैलेस्टीनियन बहनों और भाइयों के नाम करता हूं, तो उन्होंने एक कंप्लेन डाली थी आईसीसी को और उन्होंने कहा था कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक्शन लें क्योंकि उसने ग्राउंड में एक तो नमाज पढ़ी और गाजा को सपोर्ट किया और पोलिटिसाइज किया गेम को। यही वो सेम लॉयर है जिसने के पाकिस्तानी प्रेजेंटर जैनब अब्बास के खिलाफ भी शिकायत की थी और कहा था कि इसके बहुत ही एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हैं जिसकी की वजह से फिर उसको वहां से हिंदुस्तान से वापस आना पड़ा था। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। 23 years इनकी एज है बट नाउ ही हैज बिकम द टॉप रैंक्ड बॉलर इन आईसीसी बॉलर्स रैंकिंग। इन्होंने 16 अभी तक विकेट्स लिए हैं वर्ल्ड कप में और इन्होंने डिस्प्लेस किया है ऑस्ट्रेलिया के जो हैं जॉश हेजलवुड को टॉप से और फॉर द फर्स्ट टाइम इनको ये ऑनर मिला है आफ्टर ही मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू इन 2018। बाबर आजम अभी भी ओडीआई में बैट्समैन की जो पोजीशन है उसमें टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं और ये पोजीशन वो पिछले दो साल से लिए हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो अभी रिसेंटली 3 विकेट्स ली थी फॉर 23 अगेंस्ट बांग्लादेश के साथ जो मैच था इन कोलकाता, उसकी वजह से इनकी इंप्रूवमेंट आई है पोजीशन में और इन्होंने जिस वक्त ओपनर तंजीद हसन को आउट किया था तो इन्होंने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की थी क्योंकि 51 ओडीआईज में इन्होंने 100 विकेट्स ली थी। तो ये है जनाब हमारी आज की खबरें और इसके बाद अब हम जाएंगे क्रिकेट के सेगमेंट की तरफ और बात कराएंगे आपकी रशपाल बाजवा साहब, क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, उनसे।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। cibc.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। सीआईबीसी, एम्बिशंस मेड रियल।
इस दिवाली पर गो ट्रांसिट आपके लिए लेकर आए हैं गो दिवाली ट्रेन, यूनियन स्टेशन से किशनर तक। गो दिवाली ट्रेन पर दिवाली मनाते हुए अपने सफर को यादगार बनाएं, एक खास जश्न का मजा लें और शामिल हो जाएं म्यूजिक, डांस और बहुत से तोहफों भरे खूबसूरत सफर में। मजीद मालूमात के लिए gotransit.com/diwali।
उर्दू पोस्ट और असगर भट्टी के तावुन से इलामा इकबाल डे, सैटरडे नवंबर 11th, ठीक शाम 5 बजे से रात 10 बजे। स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सैयद तकी आब्दी, जनाब करमत अल्लाह गौरी साहब। फ्री गिफ्ट, सुमरा टिकट्स और बहुत से लकी ड्रॉज। टिकट सिर्फ $40 जिसमें डिनर एपिटाइजर दोनों शामिल। अलामा इकबाल लाइव म्यूजिकल कलाम, इकबाल डे नवंबर 11th, स्टेट बैंक्वेट हॉल। फॉर टिकट्स प्लीज कॉल असगर भट्टी 6478068116 और कुत्सिया हुसैनी 6478594352।
अदनान अलवी प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 905-607-5000 905-607-5000।
हेलो एंड वेलकम बैक जी। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, वी आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड एंड हैप्पी कि आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद रशपाल बाजवा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट कनाडा के, वो हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ सैर करने निकले हुए थे। बड़े मजे इन्होंने किए हैं। पहले तो हम इनकी सैर का कुछ हाल पूछते हैं और फिर क्रिकेट के ऊपर हम बात करेंगे। तो वेलकम टू द शो सर।
थैंक यू वेरी मच
सर। हमने आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। हमारे लोगों ने भी हमें बहुत मिस किया। मुझे इतने मैसेजेस आए कि भाई वो कितने चले गए रशपाल पाजी, वो कितने सर आप गायब ही हो गए, हमें भूल गए आप।
नहीं जी, मेरी एक जॉब है क्रिकेट कनाडा प्रेसिडेंट की, वो भी मुझे करनी होती है. तो मैं आपकी नेबरहुड में ही था, मॉन्ट्रियल में था जी. वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ क्रिकेट के बारे में हमारी कोई डिस्कशन थी, तो इसके वजह से जाना पड़ा वहाँ पर.
और कल तो आपकी यहाँ पे
डिफिकल्ट टू
जी यहाँ, और फिर आपकी ब्रैम्पटन में भी थी कल, बड़ी मुझे सुना है मैंने, बड़ी अच्छी वो चली आपकी डिस्कशन.
जी जी, कल ब्रैम्पटन के मेयर जो है पैट्रिक ब्राउन, उन्होंने टीम को ऑनर किया क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए, और अपने काउंसिल और सारों के साथ उनको फैसिलिटेट किया, विच वॉज वेरी नाइस ऑफ ब्रैम्पटन सिटी. ब्रैम्पटन इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब विद क्रिकेट एक्चुअली.
सर ब्रैम्पटन के लोग हैं ही बड़े अच्छे.
सही बात है,
क्योंकि क्योंकि मैं भी ब्रैम्पटन में रहती हूँ.
वेरी नाइस.
अच्छा 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 सर, ऐसे है कि ये तो बड़े अपसेट्स चल रहे हैं, जो अफगानिस्तान की टीम है वो तो बड़ा बैश कर रही है अब लोगों को, बड़ी बड़ी टीम्स को, तो ये चल क्या रहा है इस दफा ये वर्ल्ड कप के अंदर, ये क्या हो रहा है?
देखिए जी, मैं इनको अपसेट नहीं कहता, मैं तो कहता ग्रोथ ऑफ क्रिकेट.
ओके,
अफगानिस्तान एक टाइम पे हमारे साथ एसोसिएट क्रिकेट में खेलते थे, मेंबर बने, फुल मेंबर. अब टाइम लगता है एक आदमी को वहां जाके एडजस्ट करने में. दिस इज कमिंग आउट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान. उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, बट आप लोग देखोगे इस बार हम आपको बैटिंग भी दिखाएंगे. सो दैट्स व्हाट दे हैव डन, एंड दे कोचिंग स्टाफ ने उनके साथ अच्छा काम किया है, इनिंग बिल्ड करते हैं, प्यार से खेलते हैं. सो वो जीते जिताए मैच जो है वो अब हारते नहीं है, वो उनको जीत रहे हैं. सो अफगानिस्तान काफी देर से अच्छा कर रहा था, बट आई थिंक दिस इज द वर्ल्ड कप दैट हैज शोड कि भी अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी अ फोर्स टू रेकन इन फ्यूचर. अगर वो अपना ना सिस्टम वगैरह जिस तरह से बैटिंग वैटिंग में प्रोफेशनल्स लेके आए और थोड़ा सा सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज अ गुड न्यूज फॉर क्रिकेट. व्हेन आई लुक इट फ्रॉम क्रिकेट कनाडा'स पर्सपेक्टिव, इट्स अ गुड न्यूज कि अफगानिस्तान जैसी टीमें जो है वो इंग्लैंड और बड़ी बड़ी टीमों को झटके दे रही है.
लेकिन सर अफगानिस्तान का ये भी तो एडवांटेज है ना कि उनके लड़के आके यहाँ पे आईपीएल खेलते हैं, तो दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द जो है पिचेस, तो ये भी उनको एक एडवांटेज जाता है.
देखिए जी, आईपीएल अगर यही बोला जाए कि सिर्फ जो आईपीएल खेल रहे हैं वही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो देन दैट्स रॉन्ग. कि भाई साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो है वो भी अच्छा कर रहे हैं, और इंग्लैंड के अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो भी आईपीएल खेलते हैं. सो ये तो एक बहाना हो जाता है कि आईपीएल का देने के लिए. और आईपीएल इज अ T20 फॉर्मेट, दिस इज अ 50. आई थिंक वॉट पीपल हैव टू रियलाइज, 50 ओवर की जो गेम है, बड़ी देर के बाद लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप, एंड गेम हैज चेंज्ड. ये T20 और टेस्ट मैच के बीच में अब डिफरेंट फॉर्मेट बन गया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस बार ही ना वन डे क्रिकेट में कुछ ऐसा है जो कि T20 से और टेस्ट मैचेस से डिफरेंट है. इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है, मिडिल ओवर्स में आपको लंबे लंबा खेलना पड़ता है, पेशेंस भी दिखानी पड़ती है, अग्रेसिव भी खेलना पड़ता है. आपका स्टार्ट अग्रेसिव होना चाहिए, मिडिल में आपको स्ट्राइक रेट अच्छा खेल के खेलना चाहिए, तभी आप गेमें जीतोगे अगर आप इस गेम में. सो lot of things have happened. I think it's not just because people who are playing IPL they are performing well. Unki team puri to khelti nahi, sirf Nabi aur 4-5 ladke khelte hain unke wahan IPL.
जी अच्छा सर, आज तो एक और बहुत बड़ा अपसेट हो गया. टीम इंडिया जो है अभी तक नंबर वन पे चल रही थी, आज साउथ अफ्रीका ने जो है न्यूजीलैंड को हराने के बाद अब वो नंबर वन पे आ गए हैं. तो सर ये क्या चल रहा है, जरा बताएं आप, इस पे रोशनी डालें थोड़ा.
जी, आपके पहले शो में ना आपको मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका जो है वो इज ऑल्सो इन द रनिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका अच्छा क्रिकेट खेल रही थी. और एक साउथ अफ्रीका और ये क्रिकेट है जी, न्यूजीलैंड इससे पहले बहुत अच्छा खेल रही थी, अब पिछली 3 गेम में लगातार हार गए हैं. वो इंडिया से हारने के बाद टीमों का बुरा हाल हो जाता है, पाकिस्तान 4 हार गया, न्यूजीलैंड 3 हार गया. अब तो साउथ अफ्रीका इज ए गुड टीम, आई थिंक दिस इज दे आर प्लेइंग. और उनको जो झटका लगा ना नीदरलैंड से हारने का
जी,
वो आई थिंक बहुत जल्दी लग गया, नहीं तो यूजली ये टूर्नामेंट के एंड में जाके लगता है और ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं. इस बार इनको थोड़ा जल्दी लग गया, सो आई थिंक दे हैव रियलाइज कि भी अब सीरियसली एंड दे हैव बीन अ गुड टीम. काफी वर्ल्ड कप में ये फेवरेट भी रहे, बट चोक कर जाते हैं, इनको चोक की टीम कहते रहे अभी तक. होपफुली कि ये कंटिन्यू करें, और सेमीफाइनल तो अभी उन्होंने मेक कर ही लिया है. लेट्स सी बाकी टीमें कौन सी जो है सेमीफाइनल में. इंडिया और साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट श्योर है, बाकी अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अभी भी चांसेस है ये बाहर जा सकते हैं.
अच्छा, तो ये आपने कैसे बात की कि ये दोनों अभी
भी देखो सकते हैं? मैं ऐसे मैथमेटिकली एनीथिंग इज पॉसिबल, मैथमेटिकली पाकिस्तान भी खेल सकता है. सो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, जब तक मैथमेटिकली कोई टीम क्वालिफाई या एलिमिनेट नहीं होती तब तक आपको ये कहना कि भाई वो टीम अब इस टूर्नामेंट में है या नहीं है, विच इज रॉन्ग. और मैथमेटिक्स कई बार गलत हुआ है. सो आप पहले सोचते हो कि पाकिस्तान, लास्ट वर्ल्ड कप का देख लीजिए आप, हमने सोचा था पाकिस्तान बाहर हो गया और वो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गए. सो आई थिंक दीज थिंग्स कैन हैपन. आज न्यूजीलैंड की तीसरी हार के बाद अब नेक्स्ट गेम ही मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान की है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो दैट्स गोइंग बी अ वेरी क्रिटिकल गेम फॉर पाकिस्तान. एंड ऑस्ट्रेलिया की नेक्स्ट गेम को बड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा. अफगानिस्तान के चांसेस बन सकते हैं सेमीफाइनल में जाने के अगर वो अच्छा खेल गए तो. सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग.
अच्छा, बांग्लादेश की टीम जो है उसमें भी कुछ बड़े प्रॉमिसिंग लड़के थे, लेकिन अब तो लग रहा है कि बांग्लादेश बिल्कुल ही अब आउट हो गया है टूर्नामेंट से. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इट मस्ट बी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर द बॉयज वो जो है.
आई थिंक टीम, आई वॉज हैविंग हाई होप्स फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले बोला कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो है इस टूर्नामेंट में अच्छा करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सारी टीमें उसी अपना एनवायरमेंट में खेलती हैं. इनके ज्यादा फर्क भी नहीं है पिचेस और ग्राउंड्स और सारों का. बांग्लादेश से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई इनका जो मेन शाकिब अल हसन है वो अभी तक बैटिंग में कोई इतना कोई खास काम नहीं कर सका. एंड आई थिंक बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने अपना क्रिकेट दिखाया है. मेरे ख्याल से अब तो उनको लाले पड़े हुए हैं कि ये टॉप एट में नहीं आया तो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे. कि भाई टॉप एट टीम्स जो है इस वर्ल्ड कप की वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करेंगी. सो इसलिए अब तो ये जो बॉटम की टीमें हैं बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट खेलेंगी, क्योंकि इनको सबको टॉप एट में आने की कोशिश करेंगे. सेमीफाइनल तो नहीं कर पाएंगे कोई भी इनमें से, बट इंग्लैंड एंड बांग्लादेश दे विल बी फाइटिंग फॉर द पोजीशंस टू गेट द टॉप एट. अब ऐसे दिन आ गए इंग्लैंड के.
जी जी सर, बस इंग्लैंड के ऊपर भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लास्ट टाइम ये वर्ल्ड चैंपियंस थे और वही आप वाली बात है कि आईपीएल तो फिर सारे ही आके खेलते हैं और ये पिचेस के बारे में भी इनको मालूम था. तो क्या आप जो है एज टेक्निकल क्रिकेटर आप क्या बोलते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग विद अ ब्रिटिश क्रिकेट टीम के वो जो है बिल्कुल ही एलिमिनेशन के एज के ऊपर आ गए हैं?
आई थिंक मेरी ओपिनियन है जी इसमें, आई वुड नॉट, मेरे को कोई बाद में आके ये ना कहे कि आपने क्या बोल रहे हो. इन माई ओपिनियन इंग्लैंड जो है बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स लेके घूम रहा था, और जब आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं लेके जाते तो आपके क्रिकेट को कहीं ना कहीं तो अफेक्ट पड़ेगा ये. और T20 वर्ल्ड, इन्होंने T20 बहुत खेला है रिसेंट में, बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप भी जीते हैं. मेरे ख्याल से वन डे के लिए ये दीज गाइज वर नॉट रेडी. एंड आई थिंक एक टीम की बुनियाद भी होती है दे हैव सर्टन प्लेयर्स की भी, अब वो एक ना टाइम उनका, मैं नहीं कहूंगा कि वो खराब प्लेयर हैं या उनका टाइम, एक टीम होती है 5-6 साल अच्छी चलती है उसके बाद एक डिप आता है. इतना ज्यादा आ जाएगा ये तो नहीं सोचा था, बट आई थिंक इन माई ओपिनियन दे वर कैरिंग टू मेनी ऑलराउंडर्स. वो T20 में अच्छे लगते हैं, वन डे में मेरे ख्याल से वी स्टिल I've seen that कि आज इनके पास चार बॉलर हैं और ऊपर टॉप में 5 बैट्समैन और 2 ऑलराउंडर लेके चल रहे हैं. दो टीम्स आर डूइंग वेल, कि भाई साउथ अफ्रीका ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, इवन न्यूजीलैंड वगैरह जो ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट रोल्स के साथ खेल रहे हैं. बट वेयर एज इंग्लैंड के लिए मेरे ख्याल से इनकी बैटिंग तो एकदम एंड तक जाती है और कोई फास्ट बॉलिंग भी इनकी कोई खास नहीं है. सो आई थिंक दिस वॉज बाउंड टू हैपन टू फास्ट एंड टू क्विक. बट ये वर्ल्ड चैंपियन थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देम, बट सैड टू सी कि भी टीम का डिमाइज एकदम ही मिंटो स्किंटो में ही आ गया जी एक किस्म से.
जी अच्छा सर, इंडियन टीम के ऊपर आते हैं. इंडियन टीम ने ठीक है कपिल देव के अंडर जो था वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इंडियन टीम कोई ऐसी बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं ना शक्तिशाली टीम नहीं थी. ऑल ऑफ अ सडन सौरव गांगुली आ जाते हैं और टीम के अंदर ऐसा एग्रेशन खेलने का आता है कि फिर रुकने का वो जो है नाम ही नहीं लेते हैं. फिर देन धोनी आ जाते हैं, फिर उसके बाद कोहली आ जाता है और वो ऐसा मोमेंटम बना है कि टीम इंडिया जो है वो ऊपर 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 जा रही है और आईपीएल में इतना टैलेंट सामने आ गया है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से लड़के को खिलाएं और कौन किसको ना खिलाएं. कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन व्यू, आपको लगता है कि कभी कभी ये चीज जो है ये कभी डिसएडवांटेज में भी जा सकती है टीम के कि नहीं आने वाले दिनों में अब ये टीम जो गांगुली के जमाने से शुरू हुई थी ऊपर जाना अब ये ऊपर ही जाएगी?
देखिए जी, इट्स अ प्रोसेस दैट स्टार्टेड. आई थिंक आपकी बात एकदम सही है. 1983 वर्ल्ड कप जो था, कपिल देव के पास जो टीम थी वो उस समय क्रिकेट इंडिया में इतना कोई खास नहीं था, और धीरे धीरे करते करते अब हम इस स्टेज में है कि भी इस समय इंडिया दो टीमें वर्ल्ड कप के लिए खड़ी कर सकता है. बट देन अगेन लुक एट आइस हॉकी इन कैनेडा. क्या हम कहते हैं कि भाई आइस हॉकी कैनेडा में इतनी ज्यादा चल गई, इसका डिमाइस आ गया. बट दैट्स अप्स एंड डाउन्स आर गोना गो, अदर कंट्रीज आर गोना गेट बेटर. बट एक चीज जो इंडिया में हुई है वो एक जो है सिस्टम आ गया. नॉट ओनली कि भी प्लेयर कैसे बनाने हैं, ग्रूमिंग कैसे करनी है, कैप्टन कैसे बनाने हैं, रिप्लेसमेंट कैसे करनी है. आई थिंक देयर इज एंड उसके साथ साथ पैसे आ गए. जब आपके पास प्लेयरों के पास पैसे हैं, उनको कोई और चीज की टेंशन नहीं है, तो क्रिकेट के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, मोर पीपल आर नाउ इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट. सो मैं नहीं देखता कि भी क्रिकेट का कोई डिमाइज आ जाएगा या कोई नीचे. बट देन साइकल्स आर ऑलवेज देयर. साइकल्स इन द सेंस कि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी होती थी कि तीन लगातार वर्ल्ड कप जीत गई और टैलेंट पे टैलेंट आ रहा था. और ये होता है कि आपकी एक सचिन और विराट जो है रोज नहीं पैदा होते हर कंट्री में. बाबर लगा लो या कोई और जैसे टैलेंट है, दे डोंट कम एवरी डे. सो इफ इन फ्यूचर भाई माओ ने अगर अच्छे विराट कोहली और सचिन नहीं पैदा किए तो इंडिया में भी डिमाइस आ सकता है क्रिकेट का. बट आई थिंक द सिस्टम दैट दे हैव सेट अप, इट्स अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ. कि भी अब आपका फर्स्ट क्लास सिस्टम है, आईपीएल है, नेशनल लेवल है. टीम ए जो है वो इंडिया की वही इतने टेस्ट मैचेस और वनडे और गेमें खेलती है कि भी दे आर रेडी फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट. सो आई डोंट सी दैट इन द नियर फ्यूचर. बट आगे तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कोविड भी आ जाएगा, सो इंडिया की टीम भी नीचे जा सकती है.
अच्छा, नहीं नहीं सर, आपने आपने हमारे ग्रेट्स के नाम ही नहीं लिए. आपने जो है वो इमरान खान, वसीम अकरम, जहीर अब्बास,
yes.
मियां दाद, उनके नाम आपने बस अपने बाबर को खुश कर दिया खाली. सर ये तो ये तो लड़ाई करने वाली बात हुई ना फिर सर.
मैंने मैंने करंट इस समय जो प्लेयर है वर्ल्ड लेवल में जो इस समय जिनका नाम है करंट में, मैं उनका नाम ले रहा था. अदरवाइज पाकिस्तान I don't think so. Because Babar is even close to the greats that Pakistan has produced, like Wasim Akram, Imran Khan, and you know Javed Miadad and
Zaheer
Abbas. Because इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है. उस समय पाकिस्तान का क्रिकेट इतने हाई में था, and India was nowhere near. So things change. It's just that implementation of the right system, and कभी मौका मिला इन्होंने उसको यूज किया, और इस समय इंडियन क्रिकेट इज एट द हाईएस्ट इट हैज एवर बीन.
जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर, ये तो जो आज हमारे पास तो टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन हम आपसे ये बात जरूर पूछना चाहेंगे. कुछ ऐसे डिसीजंस आए हैं, जैसे कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच था, उसमें वो जो लास्ट बॉल के ऊपर आउट नहीं दिया गया उसमें, तो ये आप जो हैं आपने इतनी बड़ी पोजीशन पे खुद काम भी किया है और आप देखते भी हैं, आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी के रहते हुए ये एम्पायर्स कॉल होनी चाहिए? क्या है क्रिकेट का रूल, क्या है बताइए जरा इसके बारे में.
देखिए जी, क्रिकेट का रूल जो है वो मैं भी जो मेन कई लोग जो इस समय कह रहे हैं वो उस रूल के, मैं भी उन्हीं की तरह उसमें बिलीव करता हूँ. कि भी क्रिकेट का रूल ये है कि भी अगर अंपायर को, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि भी प्लेयर आउट है और बॉल अगर स्निक करती हुई भी जा रही तो वो आउट माना जाएगा, और अगर उसने नॉट आउट दे दिया तो वही सेम बॉल जो अगर बॉल साइड से टच करके भी जा रही है, स्निक करती हुई और थ्री क्वार्टर लग रही है तो नॉट आउट दिया जाएगा. विच इज नॉट इन माई ओपिनियन, बॉल विकेट पे लग रही है तो वो आउट होना चाहिए, चाहे एम्पायर कहे आउट है या नहीं है रिव्यू के बाद. बट दैट्स द रूल, एंड आई पर्सनली फील कि भी ये रूल के ऊपर जो है आईसीसी और जो भी लोग इस रूल्स के बारे में काम करते हैं उनको एक्चुअली दे शुड लुक एट इट. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट हैपेंड ऑन, कई बार ही होता है कि गेम में बॉलर जो है वो लगता है कि एकदम आउट है और अंपायर नॉट आउट दे देता है, और कई बार आउट दे देता है तो उसमें स्निक होके जा रही है या थ्री क्वार्टर बॉल टच हो रही है तो उसमें आउट दे देते हैं. सो आई थिंक दिस, बट ये जी दिस इज द आयरनी ऑफ द गेम. रूल बने हैं, यू हैव टू फॉलो. वर्ल्ड कप जो है फाइनल, अगर आपको मालूम हो कि लास्ट टाइम जो है टाई था, बट वो जीत गए क्योंकि इंग्लैंड ने ज्यादा चौके और छक्के मारे थे, जबकि स्कोर टाई था. बट दैट वाज अ रूल दैट हैज टू बी फॉलोड. दैट्स द होल थिंग. दिस इज दैट वाज अनफेयर ईदर. मैं मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड कप जो है ना न्यूजीलैंड का बनता था, और अगर ज्यादा से ज्यादा तो दोनों को टाई करके दोनों को जॉइंट विनर देना चाहिए था, बट दैट्स दोज आर द रूल्स यू गॉट टू लिव बाय इट।
अच्छा, तो अब सर देखे ना कि इंडिया पाकिस्तान का अगर फाइनल ना हुआ तो फिर तो वर्ल्ड कप के अंदर क्या एक्साइटमेंट है। लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछ रही हूं कि आप जो है फाइनल किसके बीच में देख रहे हैं? वन इज इंडिया ऑफ कोर्स आई नो, व्हिच इज द सेकंड टीम?
आई थिंक लुकिंग एट इट इंडिया वर्सेस मैं बोलते बोलते दो बार ही सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका एंड India versus South Africa, the way South Africa is playing, and मेरे को Indian government ने वीजा दे दिया है, so मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, hopefully अब जाके अहमदाबाद में final South Africa versus India का देख
सकूँ। Okay, very good sir, very good, that's very good news sir, it's an absolute pleasure talking to you. Please आप हमें ignore ना किया करें, please आप हमारे साथ जुड़ा करें, हमारे लोग जो हैं आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो अभी वी स्टिल हैव फ्यू डेज फॉर वर्ल्ड कप, तो हम आपको फिर से भी तकलीफ देंगे एंड विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप हमारे साथ जुड़े, बट दैट्स ऑल द टाइम वी हैव एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।
थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर टू बी हियर।
थैंक यू जी, बाय बाय।
तो ये थी हमारी आज की खबरें एंड ब्यूटीफुल शो।
यस, वेरी नाइस, ही इज अ वेरी अच्छा, ये बेसिकली ना इनके अंदर बड़ा यहाँ पे वो होके बैठते हैं, वरना ही इज अ वेरी ह्यूमर वो इनके अंदर है। हाँ. तो वो बड़े बड़े वो उसमें बात करते हैं, तो आज उन्होंने थोड़ा सा अपने शेड्स दिखाए ह्यूमर के।
वेरी नाइस, दैट्स द वे इट शुड बी। तो अब हम लिए चलेंगे अपने सामईन नाजरीन को कहाँ पर?
जीशान के पास।
जीशान के पास लिए चलते हैं और कुछ एक दुआ के साथ, और उसके बाद फिर मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी
इंशाल्लाह। जैसे
पौने छह बजे तक आपने हमें साथ साथ रहना है, पौने छह बजे तक, टिल टुमारो, अल्लाह
अल्लाह।
सुरूर रखना बला से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशान पना मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का होशा जन का होशाना बुगुंचा दिलों के चमन का, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, मैं सब के लिए ये दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C.
Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world, in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
Oh, तुझे भीग जाऊंगी मैं रेत सी बूंद का दरिया तू पाके तुझे भीग जाऊं
तर जाऊं तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं
तो रीजन है मैं तुझसे मिली बॉय थोड़ा कर ले सब के और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन हो गई हो। क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती, क्यों करके इशारे मुझे बुलाती, फिर घर पे बुला के फिक्र क्यों जाती, क्यों छत पे करके गाना गाती।
कुंडी मत पड़ता राजा, सीधा अंदर आ राजा, कुंडी मत पड़ता राजा, सीधा अंदर आ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा, कुंडी मत पड़ता राजा, सीधा अंदर आ राजा, धीरे धीरे राजा, धीरे धीरे राजा, धीरे धीरे राजा,
जानू तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशान पे जाके करूंगा मैं वैसे टकाते, आज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के, मजा उठा ले बेबी आज रात का, तलब जगा के 08 का,
नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दल दल, गुलाब तर गिरा दो लगा के